آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔ आज के मुख्य समाचार में एक हानिकारक रिपोर्ट के मद्देनजर एक क्षेत्रीय अनुदान कार्यक्रम का निरीक्षण करने का किया गया संकल्प, न्यू साउथ वेल्स के व्यापार मंत्री स्टुअर्ट एज, जॉन बारेलारो व्यापार नौकरी घोटाले में गए हैं उलझ, और खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम का होगा आमना सामना। आज के बुलेटिन में फेडरल सरकार ने एक रिपोर्ट द्वारा किए गए खुलासे को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्रीय अनुदान कार्यक्रम को ओवरऑल करने की कसम खाई है। रिपोर्ट में पाया गया है कि राष्ट्रीय आयोजित मतदाताओं को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री कैथरीन किंग ने बिल्डिंग बेटर रीजन्स ग्रांट्स प्रोग्राम को फिर से डिजाइन करने का वादा किया है ताकि ऐसा दोबारा न हो, लेकिन राष्ट्रीय नेता डेविड लिटलप्राउड ने रिपोर्ट के निष्कर्षों और रीडिजाइन योजना को खारिज कर दिया है।
Regional Australia deserves funds, and this is a real question mark now to this government. Are they just going to strip away? Is this an excuse for them to strip away regional funding because they can't win seats in regional Australia?
उनका कहना है कि आश्चर्यजनक नहीं है कि नागरिकों की सीट को अधिक धन मिला है, और उन्होंने बिल्डिंग बेटर रीजन्स ग्रांट प्रोग्राम की भी आलोचना की। ये उम्मीद की जा रही है कि न्यू साउथ वेल्स के लिबरल नेता स्टुअर्ट एज आज यानी कि शुक्रवार 29 जुलाई नए सबूतों का जवाब देंगे। सबूत बताते हैं कि उन्हें इस बात का पता था कि जॉन बारेलारो की नियुक्ति से पहले एक लोक सेवक को न्यूयॉर्क व्यापार आयुक्त का रोल पेश किया गया था। राज्य सरकार द्वारा लेबर को प्रदान किए गए दस्तावेजों में से पता चलता है कि एज ने न्यू साउथ वेल्स की प्रमुख एमी ब्राउन के साथ पद के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा की और उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में एक नाम भी जोड़ा था। इससे पहले व्यापार मंत्री ने कहा था कि उन्होंने खुद को इस प्रक्रिया से दूर रखा है और काम को लेकर पूर्व उप प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की है, लेकिन लेबर लीडर क्रिस मिंस का कहना है कि सरकार की उंगलियों के निशान व्यापार पद पर पूरी तरह से हैं और नियुक्ति को लेकर उनकी कहानी बदलती रहती है।
Firstly, we were told it was arm's length of government. Secondly, we were told it had absolutely no ministerial involvement. Thirdly, we were told that there was no suitable candidate. All of the defences of the New South Wales government in relation to that position have fallen over.
फेडरल वृद्ध देखभाल मंत्री का कहना है कि आवासीय घरों में 2400 घंटे पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 800 से अधिक अतिरिक्त नर्सों की आवश्यकता होगी। अनिका वेल्स का कहना है कि लगभग 80% सुविधाओं में पहले से ही साइट पर 24/7 नर्स हैं और सरकार इस सप्ताह संसद में पेश किए गए कानून के तहत इसे जनादेश बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2023 तक उन शेष 20% घरों के लिए अतिरिक्त 869 नर्सों की आवश्यकता होगी जिनके पास वर्तमान में 2400 घंटे पंजीकृत नर्स नहीं हैं।
We are working with providers to make sure that everybody will have those nurses so that come 1 July next year, every single older Australian knows that they will have access to a nurse when they need it in their facility across the country.
इस बीच फेडरल सरकार ने जुलाई 2023 में शुरू होने वाले एक नए गृह देखभाल कार्यक्रम की शुरुआत में भी देरी की है। उन्हें इस बात की चिंता थी कि सपोर्ट एट होम कार्यक्रम रॉयल कमीशन इन एज केयर की सिफारिश से अलग है और उसकी वजह से वृद्ध लोगों को खतरा हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत अब जुलाई 2024 में होगी। नए आंकड़े से पता चलता है कि पिछले एक साल में यौन उत्पीड़न पीड़ितों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि 2021 में 30,000 से अधिक हमले हुए थे, जो 29 वर्षों में पुलिस द्वारा दर्ज की गई सबसे बड़ी संख्या है। अपराध और न्याय सांख्यिकी के प्रमुख विलियम मिल का कहना है कि यौन हमले की दर 83 से बढ़कर 121 हो गई है, जिसमें से 2/3 पीड़ित हमले के वक्त 18 साल से कम उम्र के थे। उन्होंने कहा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के हमले से बचने की संभावना 6 गुना अधिक थी, जबकि दर्ज किए गए हमलों में से एक तिहाई से अधिक घरेलू हिंसा से संबंधित थे। यदि आप या आपका कोई परिचित जरूरतमंद या संकट में है तो कृपया राष्ट्रीय यौन आक्रमण घरेलू और पारिवारिक हिंसा परामर्श सेवा को 1-800-737-732 या लाइफलाइन 131-114 पर कॉल करें। एक मानवाधिकार समूह ने एक फ्रांसीसी अदालत में कानूनी शिकायत दर्ज की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को 2018 में अमेरिका स्थित पत्रकार जमाल खशोगी की भीषण हत्या में हाथ था। डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड नाउ डॉन का कहना है कि उन्होंने अपनी 42 पेज की शिकायत दर्ज करने से पहले मोहम्मद बिन सलमान के फ्रांस जाने के लिए 2 साल तक इंतजार किया है। डॉन की निदेशक सारा विट्सन ने फ्रांसीसी अधिकारियों से मोहम्मद बिन सलमान की आपराधिक जांच शुरू करने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि उन्हें किसी किस्म की छूट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि यह सऊदी राज्य के प्रमुख नहीं है। सलमान वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आज कामकाज के सिलसिले में एक डिनर के लिए मिलने वाले हैं, लेकिन सारा विट्सन का कहना है कि बैठक से दुनिया को मानव अधिकारों के बारे में गलत संदेश मिलता है।
How on earth is Macron or Biden going to persuade the whole world to stand behind Ukraine because of democracy, because of the rule of law, because they oppose war crimes like the ones Russia is carrying out, when they are cuddling up and fist bumping with a brutal dictator and others like him in the Middle East.
उधर ऑस्ट्रेलियाई परिवारों को चेतावनी दी गई है कि उन्हें अपने बिजली के बिलों में तेज बढ़ोतरी के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। देश के बिजली बाजार में कीमतें अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं और ऑस्ट्रेलियन एनर्जी मार्केट ऑपरेटर AEMO की एक रिपोर्ट के अनुसार 30 जून तक के महीनों में बिजली की थोक लागत 264 प्रति मेगावाट तक छू रही थी। यह अभूतपूर्व स्तर वर्ष से पहले 3 महीनों के मुकाबले 203% ज्यादा है और लंबी अवधि की प्रवृत्ति से लगभग 6 गुना अधिक है। लेकिन उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स ने 9 नेटवर्क को बताया कि सरकार समाधान के लिए जलवायु योजना पर काम कर रही है।
We've made it really clear that we are going to act on climate change in a way which gets more renewables into the electricity grid. The real thing now is that renewable power is cheap power and we'll see electricity prices come down.
लेकिन विपक्षी नेता पीटर डटन ने तर्क किया कि लेबर पार्टी ऑस्ट्रेलियाई परिवारों पर बोझ करने में असफल साबित रही है।
You're paying more and more, and electricity bills, this government promised that they'd go down by $275. The Prime Minister confirmed in question time this week that Labor will break that promise.
अब भारत से कोविड मामलों की खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 20,409 नए मामले सामने आए और फिलहाल रिकवरी रेट 98.48% पर है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 का सक्रिय केस लोड 1,43,988 पर है और वायरस की वजह से 32 लोगों की मृत्यु हो गई है। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 70 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 55.62 रुपए हो गई है। फुटबॉल समाचार में फीफा ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाली महिला विश्व कप को स्थगित करने के निर्णय पर विचार कर रही है। एक फ्रेंच रिपोर्ट में कहा गया है कि गवर्निंग बॉडी गुप्त रूप से यूरोप में टूर्नामेंट के लिए अधिक आकर्षक प्रसारण के लिए सौदे की मांग कर रही है और उनका इरादा टूर्नामेंट की शुरुआत की तारीख को 20 जुलाई से 20 अगस्त या उससे भी आगे बढ़ाने का है। पिछले हफ्ते इस टूर्नामेंट को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कई प्रमुख आयोजनों में वन ईयर टू गो नाम देकर मनाया गया था और फीफा महासचिव फातिमा समोरा पिछले हफ्ते सिडनी में इस मील के पत्थर को चिन्हित करने के लिए आई थी। फीफा के एक प्रवक्ता ने बयान जारी करके उन रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि उनके एजेंडे में कोई स्थगन मौजूद नहीं है। आज शुक्रवार 29 जुलाई को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तहत भारत की महिला टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया की टीम से होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार खेलती हुई नजर आएंगी। 24 साल के लंबे समय के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट की वापसी होगी। उधर मेग लैनिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम भी कॉमनवेल्थ खेल के लिए पूरी तरह तैयार है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल बौछार की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम 16 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में भी कल बरसात के आसार और वहां का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 17 डिग्री जाएगा। मेलबर्न में सुबह की ठंड के बाद मौसम साफ रहेगा और यहां का न्यूनतम तापमान 2 और अधिकतम तापमान 14 डिग्री रहेगा। कैनबरा में कल सुबह के कोहरे के बाद ज्यादातर धूप रहने की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान -6 और अधिकतम तापमान 12 डिग्री। सिडनी में भी ज्यादातर धूप रहने के आसार और वहां का न्यूनतम तापमान 6 और अधिकतम तापमान 16 डिग्री। ब्रिस्बेन में मौसम साफ रहेगा, वहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम 20 डिग्री। डार्विन में ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक जाएगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल शनिवार को तूफान की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 31 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।